ओम शांति। इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके बीच में जो पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी वरिष्ठ भ्राता रामनाथ भाई जी, आपका भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आप करीब पिछले 40 वर्षों से इस ज्ञान में चल रहे, 45 वर्षों से, और करीब 40 वर्षों से हेडक्वार्टर में अब बेस्ड हैं, यहीं रहते हैं। यहां रहकर आप देश विदेश में भ्रमण करते हैं और राजयोग की गहराइयों पर, और राजयोग जो बाबा हमें सिखाते हैं, ज्ञान जो हमें देते हैं, उसका बहुत सुंदर खुलासा भी करते हैं, मन में उठने वाले हर प्रश्न का समाधान देते हैं। और इसके साथ साथ आप जो हमारी एक रिलीजियस विंग है, धार्मिक प्रभाग की, जिसके अंतर्गत समाज में जो धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी जो एक विंग है, उस विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, और इस कारण से उस विंग के अंतर्गत जो बड़े बड़े महारथी आते हैं यहाँ पर धर्म के क्षेत्र के, उनके साथ भी आपकी बहुत अच्छी प्यारी सी दोस्ती है, और इतनी सुंदर दोस्ती कर लेते आप उनके साथ कि वो वहां जाने के बाद कहते हैं, भले वो लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, श्लोक पाठ करने वाले हैं, बहुत भक्ति के कड़े नियमों का पालन करने वाले, लेकिन यहाँ का जो जब रंग लगता है उनको, भाई जी का सानिध्य मिलता है, वहां जाकर वो सब भूल जाते हैं, कहते हम पूजा करने बैठे लेकिन हमको आबू याद आ रहा है। तो इतना सुंदर प्रभाव आप उनके मन पर बाबा की छाप का डालते हैं। तो बहुत ही अनुभवी हमारे रामनाथ भाई जी आज हम सबके सामने इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि परिस्थितियों में हम सहनशील कैसे बने। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। सभी कुशल मंगल है। बर्मा वालों को यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ ठंडा नहीं लगता है, उधर तो गर्मी है, इधर लगता है? ब्रह्मा बाबा के बच्चे है ना, तो ब्रह्मा की तपस्या भूमि है ये, तो वहां सभी को अच्छा लगेगा ना। तो हमको एक विचार आया, तो बहन जी ने टॉपिक बताया, तो आप टॉपिक तो बहुत सुनते हो आजकल व्हाट्सएप पर, टीवी पर, ज्ञान बहुत है, लेकिन मुझे लगा आप सबको देखने के बाद आपकी दिल की बात सुननी चाहिए। ज्ञान सुनने के बाद ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। ये कैसे करना, ये कैसे करना, ये कैसे करना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसके ऊपर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपने प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न और जवाब होना चाहिए। नहीं तो ज्ञान का एक टॉपिक सुना दूं तो बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स है, तो वो आपको मिलता भी है मुरली में, बाबा सब सुनाता है बहुत, लेकिन मुरली के अंदर, मुरली सुनने के बाद भी उसका स्पष्टीकरण नहीं होता है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे सदा सुखी रहना चाहते हो तो योग के ऊपर, याद के ऊपर अटेंशन दे दो। सुख और याद में क्या है? योग से, याद से विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र चलाओ तो विकर्माजीत होंगे, विकर्म भस्म होंगे। योग अग्नि से होंगे कि स्वदर्शन से होंगे, है ना? फिर बाबा कभी कभी कहता है बच्चे दिल से दिलाराम को याद करो, दिल में दिलाराम को रखो, सच्चे दिल पर साहेब रजी। आज बाबा ने कहा सच्चे सच्चे बाप से सच्चा कैसे हो, सच्चा दिल कहाँ है? तो ये सारे ज्ञान पहले साकार में ब्रह्मा बाबा मुरली सुनाता था, मम्मा फिर उसको एक्सप्लेन करती थी। नहीं तो स्कूल में देखो किताबों में सब ज्ञान है तो स्कूल में क्यों जाना चाहिए? तो टीचर क्या करता है, एक एक शब्दों का अर्थ बताता है, उस ज्ञान को जीवन में कैसे आचरण में लाना चाहिए स्पष्ट करता है, एनालाइज करता है। तो यहां भी ज्ञान सुनना ही सब कुछ नहीं है, लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन वो आचरण में नहीं आ रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन न होने के कारण, समझ न होने के कारण, सुना हमने लेकिन वो आचरण में कैसे लाए। सिंपल एग्जाम्पल बताओ, कभी कभी आप कहते हो मैं सच्चे दिल से बोलता हूं, तो ये दिल बोलता है? This heart is speaking. So which heart? This is just pumping the blood. हम कहते हैं, I love you from my true heart. मैं सच्चे दिल से बात करता हूं. इधर ही हाथ लगाते हैं ना, तो ये दिल बोलता है कभी? This heart is speaking. तो which heart that? फिर बाबा कहता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिल में दिलाराम को रखो. तो दिल कहां है वो? बर्मा वाले बताओ. हाँ, बुद्धि में है. हाँ, देखो बर्मा वालों को अच्छा पता है, इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ द सोल. ये दिल नहीं, ये शरीर का दिल है, ये खून चलाता है, ये निकाल के दूसरा लगा सकता है. बाबा यहां आध्यात्मिक आत्मा का ज्ञान देते हैं. आत्मा का दिल कहां है? उसका नाम है बुद्धि. समझ, मुरली सुनी, समझ कहां आती है? बुद्धि में. तो दिल से, दिल में दिलाराम को रखो. दिलाराम को कैसे रखेंगे? जो आज आपने मुरली सुनी, अगर मुरली के एक पॉइंट आपको याद है तो आपके दिल में दिलाराम है. आप क्या कहेंगे? बाबा ने आज ये कहा. तो ये किसको याद है? बुद्धि को, है ना. बुद्धि में कौन बैठा है? स्वयं दिलाराम भगवान आके नहीं बैठता, वो निराकार अपने घर में रहेगा. उसने जो श्रीमद दी, उसने जो ज्ञान सुनाया, वो याद होना चाहिए. तब कहते जब बाबा ने आज ये कहा, बाबा भी याद आया और उसने जो श्रीमद दी वो भी याद आई, उसको कहते दिल में दिलाराम को रखो. है ना, जब भी ट्रैफिक कंट्रोल बचता है किसको याद करते हो? बाबा को क्या याद करते हो? बाबा तो बाबा है, बाबा तो बाबा ही है. तो बाबा आपका बाप ही है, उसको क्या याद करेंगे? बाबा ने जो कहा वो याद आना चाहिए. जब ट्रैफिक कंट्रोल बचते, आज बाबा ने मुझे क्या कहा था, आज मुरली में क्या कहा था, वो याद आना चाहिए. तो ये बाबा की, बाप तो बाप ही है ना. अगर माताजी ने बच्चों को कहा, बच्चे मार्केट से ये लेके आओ, तो वो मार्केट में गया, मम्मी याद है, लेकिन मम्मी ने क्या कहा था वो याद नहीं है. है ना, बाप तो सदा बाप याद है, बाबा तो मेरा शिव बाबा है, लेकिन शिव बाबा ने आज क्या कहा था वो याद चाहिए. है ना, तो याद से क्या होगा? जो गलत कर्म होगा वो नहीं होगा, सत्कर्म होगा. तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिकर गति सदगति नहीं. तो रोज एक बुद्धि, एक पॉइंट भी बुद्धि में याद, तो आपके दिल में दिलाराम है. तो ऐसे प्रश्न चाहिए. तो मुझे लगा आज आप सबसे प्रश्न पूछना चाहिए. ठीक है, तो पहले भाई बताएंगे कि बहन बताएंगे? कोई एक एक को एक एक प्रश्न पूछना है. हमने देखा ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आपको इस ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए बहुत समस्या है, घर में, परिवार में, समाज में, अपने बुद्धि में. है ना, मन एक कुछ कहता है, बुद्धि एक कहती है, संस्कार ऐसे है, तो ये कैसे चले? ऐसे कोई प्रश्न पूछो तो आपको भी कुछ मिलेगा, औरों को भी कुछ मिलेगा. है ना, नहीं तो एक टॉपिक सुनाया, क्या पसंद करते हैं? प्रश्नोत्तर चाहिए, है ना. हाँ, तो कौन सुनाएगा भाई बताओ? पहले कौन शुरू करेगा? गुड, अच्छा पॉइंट. देखो दो प्रकार के बाबा के बच्चे, एक नए हैं जिसने 7 दिन का कोर्स किया, उनको कहते हैं स्वदर्शन. मैं आत्मा परम धाम में था, वहां से सत्युग में आया, फिर त्रेता में आया, फिर द्वापर में आया, फिर कलयुग में आया, फिर ये ज्ञान मिला संगम पर आया. ये स्वदर्शन जो है ये नयों के लिए है, जो नए 7 दिन का कोर्स किया वो योग में बैठे, उनको कहते ये चक्कर चलाओ. लेकिन हम पुराने 1 साल 2 साल 10 साल हो गए, तो उनके लिए स्वदर्शन अलग है. स्व माना आत्मा, आत्मा का दर्शन करो. अगर अपना चेहरा कैसा है तो आईने में देखते हैं ना, तो अपने आप को सवेरे अमृत वेले और शाम को सारा दिन अपने आप को देखो, मेरा मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसकी गति क्या होगी, मेरी बुद्धि कहां लगी हुई है, मेरे संस्कार कौन से है अभी, क्या ये संस्कार लेकर के मैं परमधाम सत्युग में जा सकता हूं, इस संस्कार को मैं कैसे मिटाऊं, क्या करूं, ये चिंता, ये स्व का दर्शन करो. मुझे ऊंच पद पाना है, तो क्या सेवा करो? तन सेवा में कैसे लगाओ, मन कैसे लगाओ, धन कैसे लगाओ, मैं अपना भाग्य कैसे बनाओ? तो ये स्वयं का दर्शन करो, ये ब्राह्मणों के लिए है। अभी यहां सभी ब्राह्मण बैठे हैं, बाबा के बच्चे हो, है ना, उनके लिए स्वदर्शन अगर ये करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे अंदर ये पाप है, इसको मिटाना है। इसको मिटाने के लिए बाबा ने कल मुरली में ये कहा था, आज मुरली में ये कहा था। तो ज्ञान से अपने आप को समझाते हो और ये महसूस करते हो, तो ये ब्राह्मणों के लिए। तो उससे क्या होगा, जो हाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, कल मैंने गुस्सा किया था, आज बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये सुना तो मेरे मन में इन्होंने मुझे ऐसे कहा था 2 साल पहले, याद आया, हाँ कहा था, मुझे उनके लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, क्या करूं, उसने तो दुख दिया था। हाँ बाबा, वो आपका बच्चा है, उस बच्चे को आप शांति की शक्ति दे दो, मन ही मन में उसके लिए शुभ सोचो। अगर ये नहीं सोचते हो तो मन में उन्होंने जो जो कहा वो सब चलता है, तो मन मैला हो गया है ना, तो और संस्कार बना दिया हमने उसका। उन्होंने 1 मिनट बोला था, हमने 15 मिनट उसका चिंतन किया, पाप में पाप और जमा हो गया। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करो कि अपने मन को समझाओ। तो ये चिंतन, ये ज्ञान चाहिए, ज्ञान से अपने आप को समझाएंगे तो जो विकर्म भरे हुए हैं बहुत, वो खत्म भी होंगे और नया नहीं बनेंगे। समझ में आया? दोनों के लिए स्वदर्शन अलग अलग है। नयों के लिए ये 5 चक्र जो कहते हैं ना, 5 स्वरूप, वो चिंतन करने के लिए नए हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे 1 साल 2 साल हो गए, हमारे लिए स्व का दर्शन, स्वयं मैं आत्मा हूं, मैं प्रजा क्वालिटी की आत्मा हूं या रॉयल फैमिली की आत्मा हूं या राज क्वालिटी की हूं, मैं देव आत्मा हूं, पाप आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, मैं कौन से आत्मा हूं, मुझे क्या करना है कल, ये रोज बैठ के चेकिंग करो। अगर कुछ कमी है, ज्ञान के द्वारा अपने आप को समझाओ। समझ में आया? और बताओ। नींद को, नींद आने का कारण एक है, रात को हमको कम से कम 6 घंटा नींद चाहिए, 8 घंटा नींद उनको चाहिए जो पत्थर तोड़ते हैं, लकड़ी तोड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम कंप्यूटर में घर में थोड़ा सा काम करते हैं, उनको कम से कम 6 आवर्स इन 24 आवर्स, 5 घंटा रात को करो, 1 घंटा दिन में करो, चलेगा। तो 5-6 घंटा नींद चाहिए। अगर 4 घंटे से कम नींद करते हो तो डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये 5-6 घंटा नींद आज क्यों नहीं आ रही है? एक, रात को हम पेट भर के खाना खाते हैं, रात को खट्टा, दही, छाछ, टोमेटो, अचार, ये खट्टी चीज, ये पित्त करता है, नशा करता है, उसके कारण भी नींद आती है। 2, खाना भी चाहिए। 3, रात को सोते समय कुछ गलत विचार करते करते सो गए, सारे दिन में किसी का परचिंतन किया, किसी को गुस्सा किया, तो उसको रात को नींद नहीं आती है, उसका चिंतन चलता है। तो नींद जो 6 घंटे चाहिए तो हुआ नहीं। तो अमृत वेले 4 बजे उठना चाहिए। किसके लिए उठ रहे हो? बाबा को दिखाने के लिए? औरों के लिए उठ रहे हो? किसके लिए योग कर रहे हो? नहीं, बाबा कहेगा फिर मूड ऑफ हो जाए, सवेरे उठे नहीं इसलिए आके बैठते, फिर इधर भी नींद, किसको दिखाने के लिए हो गया ना? नहीं, तो उसके लिए ये सारे कारण है। 4th और एक कारण है, आज के दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की दवाई लेता है, हर दवाई के अंदर नशा है, उसके कारण भी एक नींद आ जाती है। अगर इन सब से आप बाहर आना चाहते हो, निवारण, ये समस्या है, निवारण है, 1, रात को सोते समय कोई भी मुरली अपने तकिया के नीचे रख दो, पढ़ते पढ़ते सोना। अगर किसी को डिस्टर्ब होता है, मैं अकेले पढ़ो, लाइट ऑन होती है, अकेले सोते हो तो पढ़ो, नहीं तो सुनो, क्योंकि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ईयरफोन लगा के मुरली सुनो, आजकल व्हाट्सएप पर सब में मिलता है ना, ये करना चाहिए। सवेरे उठते 2 मिनट मुरली सुनो, फिर 1 ग्लास पानी पी लो, फिर योग करने की विधि चाहिए। अगर आप ऐसे योग में बैठो, बैठे बैठे देखते देखते नहीं रहेंगे, नहीं तो दूसरे विचार आएंगे, है ना। अभी आप बताओ, अमृत वेले योग में बैठते हो आप तो क्या योग करते हो? तो आप यहां शरीर छोड़ के परमधाम जाते हो? जाते हो बुद्धि से जाते हो। तो कैसे जाते हो बुद्धि से? आप तो लंदन से इधर आए, भाई प्लेन आए, ट्रेन से आए, ऐसे बताएंगे ना। तो आप यहां से परमधाम बुद्धि से कैसे गए? हवे में गए, प्लेन में गए? हाँ, कौन से संकल्प के वो भी बताओ ना, हमको पता ही नहीं। अभी देखो ऊपर चढ़े आप तो सीढ़ी से स्टेप बाय स्टेप चले ना, तो ऐसे बताओ मैं बैठते ही परमधाम कैसे जाते हो बुद्धि से, वो बताओ। लेकिन आपने एक बात भूली, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग क्या है बाबा ने बताया, सुना हर मुरली में, बच्चे पहले आत्मा समझो फिर याद करो। आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, आप मेरे से बात कर सकते हो? कर सकते हैं? आपके पास भी है, मेरे पास भी है, बात कर सकते हैं? नंबर चाहिए तो आपका आवाज, तब मैंने आपको पूछा आप कैसे परमधाम में गए, आपका आवाज परमधाम में कैसे पहुंचा? शरीर छोड़ के आत्मा नहीं जाती है तो खत्म हो जाएगा, तो कैसे गया? नंबर कौन सा? नहीं, वो लैंडलाइन, आज मोबाइल आया बाबा के पास भी। सुना, तब कहा योग इसके कारण नींद आती है। हमारे कोई कल्पना करते हैं, कल्पना राजयोग इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज अ फैक्ट। विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो बाबा ने मुरली सुना, बहुत दफा मुरली में कहा, बच्चे मन बुद्धि मेरे से लगाओ। एक ही बुद्धि नहीं, मन और बुद्धि दो है। करंट चाहिए तो दो तार जोड़ेंगे तो करंट आता है। भारत एक देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता, दो हाथ जोड़ता है, है ना। तो दो शक्तियां हैं। सारी दुनिया ने हमको पढ़ाया मन लगाओ, मन मना भाव। शिव बाबा ने आके मन और बुद्धि, एक ही बुद्धि नहीं, एक ही बुद्धि नहीं लगती है, दो चीज है। नहीं तो मन में गलत विचार आएंगे, अगर मन में चिंतन करेंगे बुद्धि इधर उधर जाती है। मन और बुद्धि को पहले एक करो, तो तपस्या करें अमृत वेले और शाम को। सारा दिन याद कहते हैं, 8-10 घंटा आप याद कर सकते हो। बाबा ने कहा योग नहीं कहा, तपस्या नहीं कहा, याद। सवेरे से रात तक 8-10 घंटा चार्ट रखो, याद। क्या याद करो? बहन जी को देखते ही, शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इसको शांति की शक्ति दे दो। किसी आत्मा को देखते ही श्रेष्ठ संकल्प करना है ना, शुभ भावना, मनसा सेवा, ये 8 घंटा कर सकते हो आप। कर्म कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, किसी न किसी की याद आती है, उनके प्रति श्रेष्ठ संकल्प करो, ये 8 घंटा कर सकते हो। लेकिन इससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं, विकर्म बनते नहीं हैं, ये अंतर पता मुझे। अमृत वेले और शाम को जब बैठते, उसको तपस्या कहा। बैठते ही अपने आप को, इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट यूअर कॉन्सियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्सियसनेस। तो बैठते ही आप, मन आपको शरीर की याद है, मैं शरीर हूं, शरीर है, शरीर में है, अपने को जागृत करो। मैं कौन? किसको पूछा? आत्मा ने किसको पूछा? मन ने मन को पूछा। हाँ, याद किसको रहती है? बुद्धि को। हाँ, जो आपने ज्ञान सुना बुद्धि को याद है। योग सवेरे शाम बैठते ही पहले आंखें खोल के आराम से बैठो, अपने आप से बात। उसको बाबा ने कहा अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो। कैसे बनो? बैठते ही पूछो, अगर आप कौन है, मुझे दिखाई देते बहन जी है, फिर भी मैं पूछूंगा बहन जी आप कौन, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए, आप क्या करते हो, ये सब पूछेंगे तो पता चल गया ना, बहन जी तो दिखाई देती है। तो ऐसे अपने में आत्माओं पता है, पूछ लो मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। एक अंगुली जुट गई। फिर मेरा रूप कैसा है? जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसा सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा, यहां दिखाई नहीं देगा, अंदर है। तो ये बताना, समझा रहा हूं मैं अपने आप को, मेरा रूप तुरंत बुद्धि कहते हाँ उस दिन बहन जी ने बताया था, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। तीसरा, मेरे गुण हाँ मेरे सात गुण है, दैवी गुण और आसुरी गुण, काम क्रोध लोभ ये शरीर के मेरे नहीं। जब मैं परमधाम से आया था पवित्र आया था, जब मैं परमधाम से आया था कैसे आया था, शांत शीतल था। एक एक गुण ले लो, सात गुण है, एक एक गुण धीरे धीरे अपने को पढ़ाओ, मेरे गुण कौन से है। चौथा मेरे कर्म, मैं आत्मा इस भ्रकुटी में बैठकर, देखना है तो आंखों से इधर उधर देखता हूं, योग में बैठे कौन गया कौन आया देखना चाहिए, हाँ एक जगह पर है ना, इसलिए बड़ा चित्र रखते हैं, एक जगह देखते बैठ जाओ और अपने आप से बात करो। हाँ मेरे आदत है इधर उधर देखने के, नहीं अभी योग में इधर उधर नहीं देखना, मुख से बोलना नहीं, हाथ पांव हिलाना नहीं, विदेही का शरीर का उपयोग नहीं करो, नहीं तो आदत है हमें, उस आदत से बाहर अशरीरी का। फिर पांचवा मैं कहां से आया, अब आया सीधा परमधाम। ये पांच प्रश्न आपने डायल किया, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से है? पांचवा ये नंबर डायल किया, अभी आत्मा यहां ही है, अपना शरीर छोड़ के जाती नहीं, आपका आवाज मन का आत्मा का आवाज ऊपर जाता है, समझ इस फ्रीक्वेंसी मीट, मोबाइल इधर ही, आपने नंबर किया डायल, यहां से आवाज सात समुद्र पार करके जाता है। कैसे गया वो मोबाइल, गया नहीं, वो दिखाई देता है नहीं, सुनाई देता है। तो यहां बैठे बैठे आराम से बैठो, ये नंबर भूलना नहीं, मैं कौन, इसको बाबा कहते आत्म अभिमानी बनना, ये नंबर याद रखना, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, परमधाम से। तो परमधाम में कौन है, शिव बाबा, कौन है वो, आप कहेंगे मेरे पिताजी के पास दो कार है, इतना जमीन है, इतना पैसा है, ऐसे बताएंगे ना, तो आपके पिताजी के पास क्या है, शिव बाबा तो आपका बाप है, क्या है उसके पास, सब कुछ में क्या है, कम से कम और हाँ बताओ, बाबा के मुख्य आठ शक्तियां है, सर्व शक्तियां, इसलिए दुर्गा को अष्ट शक्तियां दिखाते हैं, बहुत छोटी छोटी शक्तियां अलग मुख्य। शिव बाबा हमारा पिताजी कौन है, पवित्रता का सागर है, एक शक्ति है ना। दूसरा हमारा पिताजी कौन, शांति का सागर है, कभी गुस्सा नहीं करता है। हमारा पिताजी कौन, ज्ञान का सागर है, ज्ञान सुनाता है। हमारा पिताजी कौन, आनंद का सागर है। शिव बाबा कौन, दुखहरता सुख करता है। शिव बाबा कौन, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। शिव बाबा कौन, भाग्य विधाता है, बच्चों का भाग्य बनाने की विधि बताता है, तन मन धन समय स्वास कैसे सेवा में लगा, रोज विधि बताता है। और आठवां दिव्य बुद्धि दाता है, ये आठ मुख्य शक्तियां। तो बैठ के मांगो नहीं, मेरा बाबा ने कहा बाप समान बनो, तो मेरा बाबा क्या करता है, पैसे मुझे करना है ना, बैठ के देख लो मैं आत्मा, शिव बाबा कहां परमधाम में क्या करता है, वो देखो कितना पवित्र है, बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, कैसे बनूं मैं, आप ऊपर रहते हो मैं इधर रहता हूं, आपको शरीर भी नहीं है तो कैसे पवित्र हो आप, किस में पवित्र हो, बाबा आप मन में किसी देहधारी का विचार नहीं करते हो, मैं भी आज के बाद कोई देह का चिंतन नहीं करूंगा, मैं आपके जैसे बनूंगा, आपके जैसे औरों को देखते उनके प्रति शुभ सोचूंगा, ऐसे बात करो। बाबा आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, आप शांति के सागर हो, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपके जैसे ही आज के बाद किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करूंगा, मुझे आपके जैसे बनना, कल आपके पास आना है। बाबा आप सबको ज्ञान सुनाते हो, जो आपने ज्ञान हमें सुनाया वो मैं आपके जैसे औरों को भी सुनाऊंगा। एक एक शक्ति लेके बात करो, आठ मिनट आपका मन और बुद्धि वहां रहे ना। अगर आप इधर बैठे हो, सूर्य बाहर आया हुआ है, सूर्य की किरणें आपको लगती है, आप बैठो सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, पसीना निकल रहा है, पड़ रही सूर्य की किरणें, सूर्य तो आया हुआ है ना, आपके ऊपर पड़ रही है, क्यों नहीं पड़ रही है, आप छत के नीचे बैठे हो, अगर आपको सूर्य की किरणें चाहिए, ये शरीर को बाहर लेके जाओ, वो आया हुआ है, पांच मिनट वहां बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है, पसीना निकल जाता है, शिव बाबा आया हुआ है, शिव बाबा शक्ति देता है, लेकिन आत्मा मकान के अंदर है, बाहर तो नहीं है। शिव बाबा ने शरीर का पसीना निकालते नहीं कहा, बीमारी मिटाते नहीं कहा, आत्मा की। लेकिन आत्मा मकान के अंदर है ना, उसको उसकी शक्ति चाहिए। तो आत्मा को पहले आपने जागृत किया, बाहर लेके गए, शरीर को बाहर लेके गए, आत्मा को बाहर लाओ, जाग उसको कहा आत्म अभिमानी, आत्मा को जागृत करो, फिर बाबा से बात करते हो, उसके साथ कनेक्शन जुड़ा आपने, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ बाबा की शक्तियों के, बाबा आप कैसे हो, मुझे आपके जैसे बनना है। आठ शक्ति ले लो, आठ शक्ति, एक एक शक्ति लेके बात करते हो तो उसके कनेक्ट हो गया, तो उसकी किरणें अपने आप आपके पर पड़ती है। नहीं तो इधर देखो उधर बात करो नहीं, उसी को इधर बुद्धि से विजुअलाइज भी नहीं करो, चित्र भी नहीं चाहिए, आराम से इधर देखते रहो और आपका आवाज पहुंच रहा है, एक एक शक्ति लेके बात करते रहो, अपने आप वो वाइब्रेशंस, आपके जो पाप है, देखो बुरे स्वप्न आता है पाप आत्मा, कैसे कहेंगे आप हम पाप आत्मा के पुण्य आत्मा, कैसे पता चला आपको, स्वप्न बताते हैं। अगर पांच विकारों के स्वप्न आते कहीं से नहीं आते हैं, आत्मा के अंदर जो भरा हुआ है वो स्वप्नों में दिखाई देता है, फिर मन में विचार आता है, फिर बच्चा जन्मते ही लंगड़ा अंधा काला गरीब गोरा कौन कर रहा है, मेरे कर्म ऐसे है, कैसे मेरे कर्म, कहते हो देख लो मुकड़ा कौन से स्वप्न आते, संस्कार कौन से भरे हुए है। उस पाप को मिटाने के लिए शिव बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन बनाता हूं, मैं धन देने नहीं आया हूं, किसी की बीमारी मिटाने नहीं आया हूं, मेरा काम पतित आत्मा को पावन करना, पाप मिटाने आया हूं, कहां पाप है मेरा, स्वप्न बताता है। अगर रोज ऐसा एक दो तीन महीना रोज करते हो तो देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं धीरे 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 मिटते जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा हाँ ये दवाई लेने से ये सिर दर्द ठीक हो गया है ना, तब आप भी खाते रहेंगे दवाई, दूसरों को भी बताएंगे ये दवाई ले लो तो ये बीमारी मिटेंगी। प्रूफ के बिगर, विश्वास के बिगर देयर इज नो प्रोग्रेस। हर एक को विश्वास चाहिए, मेरे पर विश्वास रखो, डॉक्टर पर विश्वास कैसे रखे, अगर उसकी दवाई ने मुझे ठीक किया तो विश्वास होगा ना, अपने आप तो नहीं होगा ना, तो यहां भी प्रूफ चाहिए। ये तपस्या, जब भी अमृत वेला बैठते हो नींद आने का कारण, व्यर्थ विचार आने का कारण, विकल्प आने का कारण, कहीं से नहीं आता है, ये बुद्धि खाली है, हम मन चिंतन करता मैं आत्मा हूं ज्योतिर्मय, बुद्धि को यूज नहीं करता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में योग वो है राजयोग, ये मन और बुद्धि दोनों को एक करो पहले, कैसे करो, मन प्रश्न करता है बुद्धि जवाब देती है, तब दोनों एक हो गए, ठीक है। ऐसे परम इधर से प्रश्न करते करते परमधाम जाओ तो बुद्धि इधर उधर नहीं जाएंगी। अगर एक सेकंड भी आपने बुद्धि से नहीं बात किया, मैं भाई जी को देख ही नहीं रहा हूं, मैं इधर देख रहा हूं, भाई जी को लगता है मैं इनका दृष्टि इधर नहीं, वो इधर उधर भटकती क्यों, कोई देखने वाला नहीं पूछने वाला नहीं, तब इधर उधर भटकती है। अगर बात करते रहो अपने आप से तो बुद्धि एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जाएगी, दोनों जुड़े रहेंगे, ये एकाग्रता है। वो यहां है वैसे परम धाम तक रहेंगे, यहां से परम धाम तक दोनों यात्रा है, तो वहां भी जुड़े रहेंगे, तो इधर उधर के कोई भी एक भी विचार नहीं आएंगे। देखना मैं एक दिन ये नहीं करो ऐसे देख के बैठे रहो, देखो ना आप कितने दफा अपने घर भी जाके आते हो, सब कुछ देख के आएंगे, क्यों, खाली है, अंदर जो भरा हुआ है वो याद आएगा, माया विकल्प रावण कुछ नहीं, अपने संस्कार जागृत होते हैं, ठीक है, समझ में आया कैसे योग लगा ना। अब बता और हाँ यस, ये अभी हम कहते हैं माफ करो भूल जाओ फॉरगिव फॉरगेट, ये ऐसा नहीं होता है। कपड़े पर दाग लग गया आप कहो छोड़ दो चला जाएगा, कौन सा साबुन धोया आपने नहीं जाएगा, ऐसे साबुन चाहे घिसना पड़ता है। ये आत्मा के अंदर दाग ऐसे जाता नहीं, फॉरगिव करने से फॉरगेट करने से, माफ करो मैं माफ करता हूं चला जाएगा, याद है बहन जी को देखते बहन जी कहेगा हाँ यही बहन जी थे वो 10 साल पहले, कितना गुस्सा किया याद नहीं आएगा, अंदर है वो ऐसे माफ करने से जाता नहीं, उसकी विधि चाहिए। वो विधि क्या, आपको देखते मुझे याद आएगा भाई जी, हाँ ये भाई जी कौन, देखो दो साल पहले इतने तक सहा किया था जरूर, लेकिन वो कौन, ऐसे समझाओ अपने आप से, विचार आएगा समझाओ, हाँ वो कौन, वो शिव बाबा का बच्चा है। क्या मैं उसने जो दुख दिया मैं मिटा सकता हूं, मेरे पास शक्ति है, मैं कुछ बोलू तो और वो करेगा, मेरे पास वो शक्ति नहीं, तो मुझे बाबा ने क्या कहा, इनके पिताजी को बताओ, इनका पिताजी बहुत अच्छा है, वो मेरा बाप भी है, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, देखो दो साल पहले इसने मुझे इतना दुख दिया, आप इसको समझाओ, इसको सद्बुद्धि दे दो, ऐसा कर्म और न करे, ये आपका बच्चा है, मेरा होता तो मैं समझा देता था, ये आपका बच्चा, आप इसको समझाओ, आप इसको शक्ति दे दो, ऐसे बाबा से बार बार करते रहो। तब क्या हो गया, आपको देखते जो बुरा आता था आपने अपने को समझाते समझाते उसको मिटा दिया, अपने को समझाना है उसको नहीं। और आप अगर ये नहीं करते हो, आपको देखते ही गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो आपने 10 साल पहले बोला था वो विचार चलता है, 5 मिनट आपने गुस्सा किया था, मैंने 5 जन्म के लिए संस्कार बना दिया, बार बार विचार चलता है। अभी आप कहेंगे विचार नहीं आना चाहिए, आएगा, आपको देखते बहन जी नहीं कह सकता मैं, भाई जी कहूंगा, कौन भाई है, ये भाई है, उसने ये कहा था, आएगा तुरंत समझाओ, हाँ उसने किया था, लेकिन मुझे अभी संस्कार बनाना नहीं, मैं यहां मिटाने आया हूं। तो शिव बाबा आपने कहा था कि किसी ने कुछ भी किया आप उसके प्रति शुभ सोचो, बाबा मैं नहीं सोच सकता हूं, मुझे तो दिखाई देता है वो आपका बच्चा है, वो आप उसको शक्ति दे दो, आप उसका उसका पाप मिटाओ, आप उसको ऐसे समझाओ दोबारा न करे, तो बाबा से बात करते हो। ये आपने 10 15 20 दफा अपने आप को समझाएंगे तब मिट जाएगा, एक दफा नहीं। अभी क्या हो रहा है, आप एक योग में बैठ के करते हो, अभी ये भी बताता हूं भाई जी, मैं रोज करता हूं ऐसा लेकिन जाता नहीं, फिर भी वो भी बताता हूं। आप योग में बैठते हो, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको शांति की शक्ति दे दो, ये करते हो, लेकिन जब ये भाई मिला आपको, वो भाई पूछता है ये भाई कैसा है, अरे ये भाई बहुत खराब है, ये बहुत दुख देता है, ये ऐसा है, आपने उसके प्रति गलत इनको बताया, वो आपको याद है ना, आपने और बढ़ाया ना वही गलत। फिर आप अकेले बैठते हो, देखो उस भाई ने उस दिन कितना गुस्सा किया, इतना पैसा लिया देता ही नहीं है, फिर भी मन में भी चलता है, तब आपके संकल्प काम नहीं करते हैं, शुभ भावना काम नहीं करती है। अगर ये भाई पूछेगा आपको ये भाई कैसा है, आप बोलो बहुत अच्छा है, शिव बाबा का बच्चा है, रोज ज्ञान सुनता है, क्लास करता है, बहुत अच्छा है, बाबा इसको और सद्बुद्धि देगा। कभी भी उसकी गलती वर्णन नहीं करना, ये एक पथ्य है, ये जैसे कहें डॉक्टर दवाई ले लो उसके साथ पथ्य भी है ना, ये है। दूसरा, आप भी मन में कभी विचार आएगा इसके, देखो इसने ऐसा किया, इसने ऐसा, हाँ किया था, लेकिन बाबा ने क्या कहा, बच्चे वो मेरा बच्चा है, आपका कहना नहीं मानेगा, मुझे बताओ, मैं बैठा हूं, मैं ठीक करेगा। तो बार बार बाबा को बताते जाओ, ये दो करते हो तब वो मिट सकता है, ऐसे शुभ भावना देने से नहीं मिटेगा, विधि चाहिए। मंजूर, समझ में आया, और बताओ। हाँ, अगर आप कहेंगे आपकी गलती, आपको पता नहीं था, आपने शुभ भावना से बताया, इस भाई को कहा भाई जी उधर बैठो, उसकी इच्छा थी मैं इधर बैठो, आगे बैठो, अब ये भाई इधर बैठा था, इधर आके आपने कहा इधर नहीं बैठो, और कोई आने आप उधर बैठो, लेकिन उसको इंसल्ट लगा, मैं बैठा आपको क्या तकलीफ, बाबा का घर है ये, तो उसको फील हुआ, आपने ऐसे ही बताया, आपके अंदर कोई गलत भावना नहीं थी, ये खराब है ऐसा नहीं, लेकिन उसके मन में चक्कर चला है ना, तो क्या करो, आपको पता तो नहीं है, आप निश्चिंत बैठे हो, लेकिन उसके मन में चक्कर चल रहा है, ये भाई को मैं ऐसा करूंगा, ये ऐसा करूंगा, ये अपने को बड़ा समझता है, चक्कर चल रहा है उसका, तो क्या करो इधर, आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी आया वो किसको नहीं बताया, अगर आपने पूछा, उसने नहीं पूछा, आपको एक दिन के बाद पता चला, वो जब दूसरों को मिला उसने उनको बोला, अरे वो भाई ने, मैं कल बैठा था उसने मुझे बैठने नहीं दिया, ऐसे बोला, तब उसने आपको बोला, तब पता चला, अरे मैंने कल जो बोला था उस भाई को ठीक नहीं लगा, क्या करूं मैं। दो तरीके हैं, अगर आप इतना निर्माण हो इतना सभ्य हो तो उससे मिलते हो सन्मुख, भैया मैंने गलत भाव से नहीं कहा था, तो वो दूसरा भाई आने वाला था इसलिए मैंने आपको कहा था, सॉरी मैंने आपको गलत भाव से कहा, आप भी बाबा के बच्चे हो, आपको भी अधिकार है, तो मैंने कुछ भी गलत लगा हो सॉरी, तो क्या वहां फिनिश। लेकिन ये नहीं करता सभी मनुष्य, अहम हर एक को है, अहम मना अपना रिस्पेक्ट है, तो क्या करते योग में, बाबा आज आपके बच्चे को मैंने इंसल्ट किया, आपके बच्चे को मैंने दुख दिया, मुझे पता नहीं था, मैंने दुख नहीं दिया, मैंने अच्छी भाव से बोला, लेकिन मुझे पता चला कि उसको बहुत गलत फीलिंग आई, तो वो दूसरों को बता रहा था, बाबा आपका बच्चा है वो, मेरे कोई भाव नहीं था, आप उस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो, आप उसको समझाओ। ये दो तरीका है, इसमें टाइम लगेगा, वो इंस्टेंट हो गया, ठीक है, ये दो तरीका है, एक तुरंत कर सकते हो, एक नहीं कर सकते हो, सन्मुख वो करके चला गया, आपको मिला ही नहीं, लेकिन आपको 15 दिन एक महीने के बाद पता चला और वो है ही नहीं, क्या करूं, उसको शुभ भावना बाबा के द्वारा दे दो, मंजूर, ठीक है। और बताओ, हरेक को पूछना है, हरेक पूछ लो, देख लो, बाबा ने स्पष्ट कहा आत्मा को देख नहीं सकता है, निराकार, हाँ समझ है, अभी ये बहन जी है दिखाई देती मुझको, आत्मा तो प्रकृति में दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको आत्मा समझ के कैसे देखूं, हाँ और एक शरीर है, दो भी शरीर है, उसके अंदर आत्मा नहीं है, कैसे पता चला आपको, रुई डालते हैं नाक में, डॉक्टर ने कहा खत्म हो गया, शरीर तो है, आंखें है, सब कुछ है, दोनों में डिफरेंस हमको पता चलता है, समझ है, इस शरीर के अंदर आत्मा है, ये समझ आत्मा है, ये कौन सी आत्मा है, हमारी है, हम एक बाबा के, दोनों हम एक साथ परम धाम में थे, तो इनको देखते ही शिव बाबा ये आपकी बच्ची है, रावण का बच्चा कोई है, काला हो, गोला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, गरीब हो, जिसको जानते हो नहीं जानते हो, सभी कोई रावण का बच्चा कोई नहीं, सभी शिव बाबा के, ये समझ मिली, ये बाबा ने दिया, इसको कहते देखना, दिखाई नहीं देता है ब्रकुटि में, देखो आत्मा नहीं दिखाई देती, समझ आया इस शरीर के अंदर आत्मा है, इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, तो आत्मा अगर है उनके प्रति ये समझ है, आपका आत्मा है तो तुरंत शुभ विचार आता है, हाँ ये भूल जाते, क्यों, हमने आदत डाली शरीर को देखने की, सारे कल्प से आदत पड़ी है, ये अब भी बाबा कहता है, इसके लिए विधि मैंने बताया पहले, तो क्या करो भक्ति में क्या करता है, साधु संन्यासी माला लेके जाते हैं, राम 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 राम, इधर उधर देखते भी रहते हैं, राम राम करते जाते हैं, क्यों, मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, भक्ति है वो, अभी हमको क्या करना, अभी आप इधर से डाइनिंग हॉल जाएंगे खाने के लिए, कितने लोग रास्ते पर दिखाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इनको देखा रही है बहन जी कहां से आई, इन्होंने ये बैच क्यों पहना, ये विचार आएगा, तो क्या करना चाहिए, रस्ते पर जाओ, घर में पति है बच्चे है कोई भी हो, शुभ बाबा बार बार, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, यहां से डाइनिंग हॉल तक जाते हैं बहुत लोग दिखाई देते हैं, मंत्र जैसे पढ़ते रहो, शुभ बाबा धीरे धीरे मन में ही, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनको इनका कल्याण करना चाहिए, इनको सद्बुद्धि देना चाहिए, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको शांत, ऐसे करते रहो बार बार, कम से कम एक घंटे में एक व्यक्ति को दे दो, एक घंटे में 60 लोगों को देते हो तो नंबर 1 सोल कॉन्शियस, नंबर 1 लास्ट सोल कॉन्शियस, कम से कम 1 ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव थॉट, एक व्यक्ति के लिए सोचो, देखते ही हर घंटे में एक एक व्यक्ति को सोचो, कम से कम, इसी सोल कॉन्शियस, इसको गुड विशेस, इसको शुभ भावना, इसी को मनसा सेवा, ये सब कहते हैं, आत्मा दिखाई नहीं देती है, ऐसे शुभ बाबा दिखाई नहीं देता है, आप यहां से फोन करते हो कोई आपको लंदन में दिखाई नहीं देता है ना, वाइब्रेशंस इज ए कॉन्शियस ट्रेवल, ठीक है। और बताओ, यस, ये क्या हो गया, आपका मन पॉजिटिव, पॉजिटिव मन है तो प्योर है, क्लीन है, तब भी योग में बैठो आप, कोई भी इधर उधर के विचार नहीं आएंगे, सीधा परम धाम जाएंगे, सोने जाओ कोई भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, नहीं तो बुरे स्वप्न आने का कारण भी हम इनको देखा, इनका आंखें खुली है, कैमरा फोटो निकल गया, जब खाली होके योग में बैठो तब इनका चित्र आता है, अरे ये क्यों आए, हाँ सवेरे मैंने देखा था खाली था, इसलिए कहा या आप ले लो या दे दो। तो बाबा ने कहा बच्चे दाता के बच्चे देवता बनने वाले हो, देते जाओ, आपके पास नहीं बाबा से लेके दे दो, है ना, नहीं तो मैं ही देता हूं आता है ना, ठीक नहीं, अहम आएगा। शिव बाबा, बाबा ने कहा यूज मी, संगम पर मैं आया हूं, सारे कलप में मैं नहीं हूं, अब मेरे से लेके दान करो तो मैं भी याद रहेगा और आपकी सेवा भी होगी, दोनों एक साथ होगा। कभी भी मैं देता हूं शुभ भावना, आप नहीं देना। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, आप इसका कल्याण करो, इसको शांति। अगर बाप नहीं है, द्वापर युग त्रेता के बाद अपने जेब से दान करना पड़ेगा। अब बाबा कहता बच्चे मैं आया हूं आपके लिए, तो यूज मी, मेरे से शक्ति, मेरा उपयोग करो। तो अगेन एंड अगेन यू पुट योर हैंड इन हिज पॉकेट, राइट। और बताओ, देखो आप कहते हो हर कर्मों में बाबा का रहा, अगर आपको हर कर्मों में अच्छा हो या गलत भी हो, कभी गलत भी हुआ तब ये किसने किया, बाबा ने किया, हाँ बाबा ने किया, वो भी बाबा को पता था कि बच्चा आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता और पहले यहां ही टायर पंक्चर हो, बाबा ने आपने अच्छा किया क्योंकि और कुछ होने वाला था, तो वो बाप भी जानता है, बच्चों को पता है बाबा को, अगर हर अच्छा बुरा में दोनों में कल्याण, तो दोनों में बाबा को बताते हो देन इट इज ओके। नहीं तो हम कहते अच्छा हुआ तो बाबा ने किया, गलत हुआ तो और माया ने किया, माया गलत कैसे किया, बाप है आपके साथ माया कैसे आई। तो सदा ही हर कर्मों में बाबा आप हो। उसको बाबा ने कहा जब भी घर से निकलते हो, जब भी कोई कर्म करते हो, बाबा के पूछ कर करो, तो बाबा गलत हो तो भी बाबा जिम्मेवार, अच्छा हो तो भी जिम्मेवार, क्यों वो गलत में भी उसमें भी कल्याण है, कल कल्याण होने वाला है। आज आपको देखता है कि ये गलत हुआ, ये अच्छा, कल पता जाने के बाद पता चलेगा वो कल जो गलत हुआ ना वो अच्छा हुआ, नहीं तो आज ऐसा होता था, ये बाद में पता चलता है ना। इसको कहा कि हर कर्मों में बाबा को याद रखते हुए करते हो, सब कुछ मैं नहीं करता, मैं निमित्त हूं, करण करावन हार मेरे द्वारा कर रहा है, ये सदा स्मृति है, तो आप निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं है, गलत होने के बाद भी दुख नहीं, अच्छा होने से सुख भी नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं वो कराता है, मैं निमित्त हूं, ठीक। और बताओ, हाँ अगर बाबा ने कहा ये बच्चे संसार में कहीं भी रहो कुछ भी होता है, बाबा ने तीन चार तरीके बताया। 2013 की मुरली है देखना है, उस मुरली में सुनाए हैं, बच्चे कोई समस्या कुछ भी हो, दिल में कुछ नहीं रखो, तो दिल अगर रह गया अभी 5000 साल के लिए ऐसे रह जाएगा, दिल खाली करो। कैसे करो, तो कोई भी दुख समस्या है बाबा ने कहा तुरंत मधुबन पहुंच जाओ, बाबा है, बाबा आपके दिल को हल्का करेगा। फिर बाबा मधुबन कैसे पहुंचे, हमने कोई कहेंगे हमने देखा ही नहीं है ना, तब बाबा ने कहा अगर नहीं टीचर छुट्टी नहीं देती है तो बाबा ने कहा मनसा पहुंचो। फिर कहा दूसरा बड़े दादियों को बताओ, बाबा दादी भी मिलती नहीं। फिर बाबा ने कहा बड़े भाइयों को बताओ, वो भी नहीं मिलते हैं। फिर बाबा ने कहा अगर आपको जिस पर विश्वास है उनके सामने उल्टी करो, उनको बता दो, अंदर रखना नहीं। सबसे पहले कहा सवेरे उठकर सीधा मधुबन पहुंचाओ, है ना, टिकट भी नहीं चाहिए, मन में मधुबन देखा है, बाबा मधुबन में है तो बाबा को बताओ यहां करके, तो एकदम खाली हो जाएगा। नहीं कर सकते हो तो निमित्त दादियों को बताओ, वो भी नहीं मिलती है। बड़े भाइयों को बताओ, वो भी नहीं मिलते हैं। फिर बाबा ने कहा आपको किस पर विश्वास है उनके सामने अपने समस्या अपने बात रखो, दिल हल्का करो, दिल में रखेंगे तो डिप्रेशन होगा, भारीपन होगा, और ये अभी अगर खाली नहीं किया 5000 साल के लिए ऐसे रहेगा, क्यों अचानक परिवर्तन होगा, तो इसके लिए ये भी ठीक चलेगा जो आपने कहा, कभी भी कुछ होता है मधुबन पहुंच जाते। इट इज ओके, यस इट इज गुड, यस ये भी चलेगा। एक्चुअली माया रावण दोनों कुछ नहीं है, हमारे है कर्म विकर्म। लेकिन बाप माँ बाप है ना, बच्चों को कभी भी गलत नहीं समझते, बच्चे अच्छे मेरे, ये लोग खराब है, ये संग खराब है, मेरे बच्चे खराब नहीं कहेंगे। तो बाप भी मेरे बच्चों को खराब नहीं, रावण है ये, माया कहाँ है, पांच विकार अपने ही, हमने गलत किया हुआ है। जब योग में बैठते ही मन में गलत विचार आता है, कहां से आए वो, जब रात को आंखें बंद करके सोए हो आप, न देखते हो न सुनते हो, स्वप्न कहां से आए, बाहर से आए, दिन में ये बहन जी ठीक नहीं, ये भाई ठीक नहीं, मैं अच्छा हूं। देखो रात को जब आंखें बंद करके सोए हो, ये बुरे स्वप्न कहां से आते हैं, हमने किए हुए कर्म अंदर भरे हुए हैं, ये स्वप्नों में आता है। ऐसे दिन में योग में बैठते ही अगर बुद्धि को यूज नहीं करते हो, मन चलता है तो बुद्धि खाली है, बुद्धि ने जो जो कर्म किया भरा हुआ है, वो पुरानी पुरानी बातें योग में याद आती है, उसको बाबा ने रावण माया व्यर्थ कहा, ये कुछ भी नहीं है। हाँ समझ में, बाप बाप है, रावण माया सब मेरे विकर्म, दोनों मैंने किए वे विकर्म। हाँ रावण भी तो अंदर मेरा है ना, पांच विकार आए, दोनों हैं राम राम माया और रावण। माया कहते माया में शक्ति है, वो माया भी शक्ति डराती है, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसे तूफान आया, भूकंप आया, ऐसे होगा, ये माया भी शक्ति। रावण कोई क्रोध का संकल्प आया, कोई मोह का संकल्प आया, ये ऐसे तो अंदर है। अगर आपके अंदर जो कहता है एक भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आते, उनका नाम है पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा, उनको एक भी स्वप्न बुरे नहीं आते हैं। एक दिन भी योग में बैठे कोई भी पांच विकारों के विचार नहीं आते, रावण नहीं आता, नियम आता है। तब बाबा कहते एक सेकंड में परम धाम पहुंचो, किसके लिए, वो उनके लिए है जिनके अंदर कुछ भी संस्कार भरे नहीं है, खाली है, वो बैठते एक सेकंड में परम धाम पहुंचते हैं। लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, वो सफाई नहीं किया तो कैसे जाएंगे वो। ऐसा और बताओ, हाँ मुरली सुनते, मैं पहले बताया कि एक है रात को हमको छह घंटा नींद चाहिए, वो पूरा नहीं होती है, और जल्दी तीन बजे उठ जाते, स्नान करते, तीन बजे उठे, हमारे आदत नहीं है, सवेरे सवेरे नींद बहुत अच्छी आती है, दो से पांच छह बजे तक जो नींद आती है ना, वो गहरी नींद, साउंड स्लीप, क्योंकि शरीर ठंडा होता है, वातावरण भी क्लीन हो जाता है। लेकिन उसके कारण सवेरे आते हैं, उस समय हम योग में मुरली सुनते समय सुनते चुप बैठते हैं, नहीं लिखना चाहिए, एक एक पॉइंट सुनते रहो, लिखना चाहिए, और बहुत जल्दी भी नहीं उठना चाहिए। आप पौने चार बजे अलार्म रखो, मुंह धो लो, पानी पी लो, दो मिनट मुरली पढ़ो चाहे तो, और योग करके फिर अगर आपके पास दो समय है, दो चांस है, अगर आपको दिन में ऑफिस में जाना है तो आप नहीं सो सकते, थोड़ा वॉकिंग करो और फिर स्नान करके तैयार हो जाओ, मुरली क्लास में आओ, तो वहां मुरली क्लास में आकर मुरली लिखो। अगर नींद जैसे होती है आजकल, कुछ मुंह में कुछ न कुछ रखो, है ना, अलर्ट हो गया, पीठ को सपोर्ट नहीं देना, अलर्ट बैठना चाहिए, ये बच्चों को स्कूल में भी है, पढ़ते सुनते सुनते नींद आ जाती है ना, पेट भारी होता है, खा के जाते हैं, तो ये नियम रखना चाहिए। अगर आपको सवेरे ऑफिस में जल्दी जाना नहीं है, आधा घंटा समय है, तो योग के बाद आधा घंटा आप रिलैक्स हो सकते हैं, नींद कर सकते हैं, उसको रिलैक्स कहते हैं। लेकिन वो सुनने नींद करने की विधि है, एक गीत सुनते सुनते सो जाओ, नहीं तो बुरे स्वप्न आएंगे। अगर योग के बाद सोते हो तो बुरे स्वप्न आते हैं, है ना, तो इसलिए योग के बाद सोना नहीं चाहिए। फर्स्ट सोना चाहते हो, क्योंकि दिन में फिर ऑफिस में है जाना है, नींद आ जाएंगी, तो आप एक गीत सुनते सुनते रिलैक्स हो जाओ। और अगर मुरली सुनते थे नींद आने का कारण, रात को हमारे छह घंटा पूरी नहीं हुई, उसके लिए प्रिकॉशन, अलर्ट होके बैठो, मुरली के पॉइंट नोट करते रहो या मुंह में कुछ रखो, ये दो तीन उपाय करना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो वाइब्रेशन क्यों आ रहे हैं? अगर आपका ध्यान मुरली में नहीं है, यू आर कैचिंग अदर्स वाइब्रेशन। अगर ध्यान से सुनते हो ना, आपके चारों तरफ कुछ बोल भी रहे कोई, तो भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड। तो वो चाहिए, इसलिए मैंने कहा एक सपोर्ट नहीं देना, और मुरली लेकर सपोर्ट ना देते हुए अलग अलर्ट होकर मुरली के एक एक पॉइंट लिखो, बिजी रखो, तो अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, मुरली अगर टीचर है, टीचरों के लिए नियम है, उसको सवेरे रात को सोते समय आधा मुरली पढ़नी चाहिए। जो सेंटर में टीचर है, सवेरे मुरली उनको सुनानी है, उनके लिए नियम है, आधा मुरली रात को सोते सोते पढ़ो, आधा मुरली सवेरे योग के बाद बैठ करके पढ़ो, फिर स्नान करने जाओ, तो चिंतन करो इस सारे मुरली में विशेष बाबा ने क्या अंडरलाइन करो, और मुरली सुनाते समय उसे एक पॉइंट को हाईलाइट करो, एक्सप्लेन करो, ये मुरली के द्वारा पालना। सिर्फ मुरली फटाफट पढ़ के जाओ नहीं, स्कूल में टीचर भी बाहर घर में पहले पढ़ते हैं, तो स्कूल में आने के जो पढ़ाते वो अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये टीचरों के लिए। लेकिन आप टीचर नहीं है तो आपको पहले पढ़नी नहीं चाहिए, मुझे बाबा के मुख से पहले सुननी चाहिए, व्हाट्सएप पर आई और ईमेल में आई तो भी मुझे हाथ नहीं लगाना है, मुझे दूसरों से मिली हुई ज्ञान लेना नहीं किसी के द्वारा, मुझे बाबा के घर से सुनना है, बाबा के मुख द्वारा मुरली डायरेक्ट सुननी है। जिसको ये सब साधन नहीं है, सुन नहीं सकते, उनके लिए सेकंड तो मुरली सवेरे में, बाद में आपको सुन नहीं सकते आप, तो आप सवेरे सवेरे सुन लिया। वो किसके लिए? जिसको मुरली क्लास में नहीं जा सकते, घर में अकेले है, बाद में बिजी हो जाते हैं, तो वो सवेरे सुन लेते हैं, उनके लिए। नहीं तो आपके पास समय है, मुरली क्लास में आ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो पहले, प्राइवेट क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, बाबा के मुख से मुझे पहले सुनना है, ये नियम रखना चाहिए। आपके पास मुरली होते हुए भी हाथ नहीं लगाओ, सुन के फिर दोबारा रिवाइज करने के लिए दोबारा पढ़ो, नहीं तो क्या पहले पढ़े ना तो मुरली में आपका अटेंशन है, मैंने सुना है, इट इज नेसेसरी। और बताओ, देखो दुनिया का तो कल रात थी, आज दिन हो गया, आज दिन है फिर रात आएंगी, ये परिवर्तन है। बाबा ने विनाश आपके लिए नहीं, सभी का होगा ना, जो विनाश की बात बाबा ने कही, एक्चुअली दुनिया का परिवर्तन है, विनाश शब्द नहीं होता है, दुनिया का परिवर्तन होगा, दिन था रात, रात से दिन होंगी, हमारे संस्कारों का परिवर्तन, विनाश करना है, ये चिंता। अगर बच्चा पढ़ाई पढ़ के तैयार है, कभी भी परीक्षा हो, अगर आपने अपने विकर्म विनाश किया तो आप कल सत्युग आने दो या एक साल के बाद आने दो, आपके लिए कोई चिंता नहीं, संस्कार का विनाश करो। हम सोचते दुनिया का विनाश, हाँ दुनिया का विनाश अपने समय पर होगा, तो उसके लिए आप कर्म नहीं करो, कल खाना नहीं खाएंगे, अगर आपको डेट बताया जाए कल विनाश होने वाला है, भूकंप आने वाला है, आज खाना नहीं खाएंगे, आज पानी नहीं पियेंगे, कल के लिए जब तक है तब तक चाहिए ना, तो हमें नौकरी भी करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए, अंत तक सब कुछ करना चाहिए, एक दिन भी खाने, पढ़ाई करने वाले को पढ़ाई करना चाहिए, कमाए एक नौकरी 100 रुपया कमाते नहीं 1,00,000 रुपया कमाओ, बिजनेस करते हो बिजनेस भी बढ़ाओ, खत्म नहीं करो, कुछ छोड़ना नहीं, सब कुछ करते, लेकिन उसके अंदर 8-10 घंटा दे दो, 1 घंटा अपने भविष्य के कमाई के लिए समय दे दो। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, सवेरे 7 बजे से रात को 10 बजे तक उस कमाई में लगे हुए हैं, अपने भविष्य की कमाई नहीं है, उनके लिए ये चाहिए। ये विनाश के जो डर दिखाया जाता है उनको, सबके लिए नहीं, जो सिर्फ धन कमाना ही उस अब सेवा करना वही लगे हुए हैं, औरों की सेवा अपनी सेवा पर नहीं है ना, तो इसके लिए उनको कहा कल विनाश होगा, जाते से मैं आपके हाथ में क्या है, दूसरा मकान दूसरा शरीर आपको कैसे मिलेगा, आपने कुछ कमाई नहीं किया, दूसरों की सेवा में लगा दिया, धन इतना कमाया जो ले नहीं जा सकते हो, इसका मतलब धन कमाओ नहीं, ऐसा नहीं, 8 घंटा कमाओ, लेकिन एक घंटा 24 घंटे में एक घंटा भविष्य के कम ज्ञान योग में लगाओ, ये प्रिकॉशन, ये समझाना है। लेकिन वो सभी समझ में नहीं आता सबको। कल विनाश होगा तो कल खाना नहीं खाने के लिए तो कुछ कमाना पड़ेगा ना। हाँ, आपके पास अभी भी 10 करोड़ रुपीस है, दो ही रोटी खाना है, चार रोटी तो नहीं खाएगा, तो इतना है मुझे 10 साल 15 साल के लिए, और बहुत मेहनत नहीं करना है, बिजी रहने के लिए। तो बाबा ने कहा आत्मा की सेवा करो, सेंटर खोलो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। उसको और धन की जरूरत नहीं थी, बहुत कुछ धन है, मैं क्या करूं, और धन कमाने में समय नहीं लगाया, औरों को सुख देने में समय लगाया, सेंटर खोला, दूसरों को इतने 350 आत्माओं को सुख देने के लिए स्कूल खोला, सेंटर खोला। अगर आपके पास इतना धन है इस जीवन के लिए और समय नहीं लगाओ उसमें, अब उस धन से मैं एक सेंटर खोलूं, कैसे औरों को सेवा करूं। एक बहन है सन्यासी, उसके पास उसको एक महीने में 2 करोड़ रुपीस इनकम है, और सन्यासी बहुत बड़ी, बहुत बड़े बड़े आश्रम है उसके। उसको लगा इससे मेरा कुछ नहीं होगा, मैं सेंटर में जाके बर्तन साफ करना चाहती हूं। तो बहन जी ने कहा ये करो ये करो, तो उसको लगा ठीक नहीं लगा, क्या करो, तो उसने एक गाड़ी लिया, अभी भी जीवित है, एक गाड़ी लिया, उसको सारे ट्रक, उसको पोस्टर लगाया, एम्पलीफायर लगाया, टीवी रखी, सब कुछ रखा, सारे भारत में स्वर्णिम भारत करके एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें वो गई, सारे भारत में 2-2.5 वर्ष तक घूमी, सब सेंटर में, सब फ्री, अपने तन मन धन सेवा में लगाया, आज सेंटर खोल के बैठी है। धन है, सेवा में लगाओ। सारे भारत में इतने 2,500 सेंटर में गई का, धन है सेवा, औरों को सुख देने में लगाओ, है ना। तो इसके लिए उनके लिए ऐसा एक्स्ट्रा, विनाश होने के बाद आपने पूछना चाहिए। तब कहा बाबा कि ज्ञान को यह आध्यात्मिक ज्ञान है, समझ में नहीं आता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो पूछना, कोई बात समझ में नहीं आई, मुरली सुनो, मुरली के बाद 5 मिनट बैठ के टीचर को जरूर समय निकाल के पूछना। अगर टीचर नहीं मिलती है तो हमारा परमानेंट टीचर है, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से बात करो, बाबा आपने कहा मैं बाप हूं, मैं टीचर हूं, मैं सदगुरु हूं, मुझे आज आपने मुरली में ये कहा, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे आप समझा, आप मेरे टीचर हो, बार बार बताना। आज किसी के द्वारा सुनाई देगा, कल मुरली में जवाब आएगा, 2-3 दिन के अंदर आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा, क्योंकि बाप चैतन्य है। हर कोई भी समस्या प्रश्न मुरली में आ, दबाओ नहीं, पूछ लो, बाबा कमरे में पूछो, नहीं पूछ सकते हो निमित्त टीचर को पूछो, ठीक है। और बताओ, कहाँ आयो, हाँ किसी शरीर में, घर में, हाँ। अभी इसमें 2 चीज है, अगर देखो मनुष्य 3 प्रकार से शरीर छोड़ता है, जनरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड का। मुझे 50 साल रहना है, 50 साल हुए, 1 सेकंड के अंदर आत्मा शरीर छोड़ती है, जहां 4 महीने का गर्भ तैयार, 1 सेकंड में जाती है। लेकिन मुझे 50 साल रहना है, 40 साल के अंदर डॉक्टर ने ऑपरेशन करते करते फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो आत्मा 40 साल के अंदर शरीर छोड़ा, 10 साल बाकी है, कहां जाएंगी, मकान तैयार नहीं हुआ, वो भटकती है, समझ में, भटकती हुई किस आत्मा को कहते हैं, वो पहला समझ। वो अगर तो उनको इस घर से, ये घर का दरवाजा नरम है, ये थोड़े लोग बहुत पापी है, उनके घर में प्रवेश करती है, पुण्य आत्मा है, उसके नजदीक नहीं आएंगी, कमजोर घर में ही चोर घुसता है, मजबूत दरवाजा है नहीं आएगा। अगर कोई कमजोर आत्मा है, वो आत्मा उनके चारों तरफ घूमता है पहले, फिर समय मिला उनके अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन उनको दुख नहीं देगा, ये याद रखना, उनको दुख नहीं देगा, उनके साथ रहेगा, अपना समय हुआ 10 साल के बाद जाके जन्म लेगा। एक दूसरा और एक है, जो जानबूझ के सुसाइड कर लेता है, परीक्षा में फेल हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, जानबूझ के हत्या कर लेता है, तो उनको इनसे दुख है, तो शरीर छोड़ने के बाद उनके ऊपर प्रवेश करता है और उनको दुख देता है, वो भूत आत्मा की प्रवेशता कहते हैं, दुख देता है। तो उसके लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 तरीका है, गुरुवार के दिन शाम को 7 से 8, 7:30 उनको बिठाओ, और आप अच्छे योग करने वाले, जो विधि बताया, 5-6 बहनें, दो तीन भाई, ज्यादा नहीं, जो अच्छी नींद करने वाला एक्यूरेट योग में बैठ के शिव बाबा, बाबा को याद करो, बाबा ये आपकी बच्ची है, इस आत्मा को मुक्ति दे दो। आपने कहा मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हूं, ये आत्मा इस घर में बैठी है, इस आत्मा को दुख दे रही है, उनका कुछ हिसाब किताब होगा, आप इसको मुक्त करके इनका हिसाब किताब, जो उस आत्मा को मुक्ति दे दो। ऐसे आधा घंटा अगर आप सभी मिलकर योगदान देते हो, उस आत्मा को मिटा सकते हो, बेच सकते हो, ये तरीका चाहिए। तभी तो कहा मेडिटेशन चाहिए उसको, उनको मेडिटेशन की शक्ति चाहिए। इसलिए अगर पता चल गया ना आपको, उस आत्मा को भी शक्ति चाहिए, मुक्ति चाहता है नहीं किया, तो वो पुण्य, तो मैंने दोनों बताया, एक दुख देने, एक बिना दुख देने वाले। हाँ तो ठीक है, उसके शाम को, गुरुवार के दिन शाम को आधा घंटा उसको बिठाओ, और आप दो चार बहने, दो चार भाई अच्छे योग करने वाले, बैठकर आधा घंटा शाम को उस आत्मा को बिठा के योगदान दे दो, उसको मुक्ति देना। कौन देगा? जिसके पास शक्ति उसके लिए है, आप उसको कुछ देते नहीं हो, उसको कहते योग करो, वो नहीं कर सकती है, आपने योगदान देना चाहिए, ये योगदान से मिटा सकते हो। अगर एक दफा नहीं हुआ, दोबारा गुरुवार को करो, फिर भी नहीं हुआ तो भी रोज फिर योग करो, क्योंकि हमारे ताकत इतना नहीं, वो पावरफुल है, छोड़ नहीं रहा है, तो रोज शाम को आधा घंटा बैठ के योग करो, तो अमृत वेला आधा घंटा बैठ के योग करो, उसको बिठाकर दोनों देखना चाहिए। तो सोमानी विधि बताया, हाँ समान चिंतन वो अलग है, वो योग नहीं, योग समान नहीं है, वो चिंतन करने के लिए, योग में बैठने की अभी विधि बताया, आत्मा समझ परमात्मा के पास, बाबा ये आपके बच्चा है, एक दूसरे घर में आया है, इसको इस घर से मुक्ति दे दो, है ना, इस आत्मा को दुख है, इस आत्मा को मुक्ति, बाबा ने कहा मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हूं, है ना। तो वो बैठ के बाबा को, पहले आत्मा समझ के पहले बाबा को याद करो, फिर बाबा को बताओ, बाबा ये आपकी बच्ची है, इस आत्मा को दुख दे रही है, इस आत्मा को, इस आत्मा से मुक्ति दे दो। ये अभ्यास, ये सवेरे या शाम को, गुरुवार के दिन एक दफा, अगर साधारण है एक दफा बस, ज्यादा है तो दो दफा करो, एक एक आत्मा के ऊपर, हिसाब किताब के ऊपर है, अगर नहीं निकल रहा है तो रोज अमृत वेले शाम को दोनों टाइम बैठ के योगदान देना चाहिए, ठीक है। और बताओ, लेकिन आपने योगदान नहीं दिया। हाँ, इसलिए योग से होता है ना, तभी तो मैंने कहा माता जी का अनुभव बनाती है। ऐसे बहुत है कि योगदान छोड़ करके हम इसके पास, उसके तंत्र मंत्र में जाएंगे, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास योग की शक्ति नहीं, क्योंकि ये रूहानी हॉस्पिटल है, आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति, विकारों से। अगर ये बहन जी बहुत गुस्सा करती है, हम बोलते हैं गुस्सा करती है, ऐसे बोलना नहीं, तो इसलिए हॉस्पिटल में आई, बैठ के उनको शांति की शक्ति दे दो। हम ये नहीं करते, ये रूहानी हॉस्पिटल है, किसी को बीमारी, इनको भी डॉक्टर कहेगा बीमार है ऐसे बोलेंगे नहीं ना, डॉक्टर दवा देता है ना, तो ये रूहानी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में क्यों आए, अच्छे व्यक्ति थोड़ी आएंगे, किसी को क्रोध की है, किसी को लोभ की है, किसी को मोह के, कोई ना कोई बीमारी है आत्मा की, तो हमें बैठ के योगदान देंगे उनको, नहीं तो हम बोलते इनको बहुत गुस्सा आता है, ये बहुत क्रोधी है, हाँ तभी तो आपके पास आया, आप योगदान से उनको मिटाओ ना, नहीं तो कहो ये रूहानी हॉस्पिटल नहीं है। समझ में आया? और बताओ, और कौन बताएगा? हाँ भाई बता, गया थोड़ा सा, क्योंकि प्रश्न उत्तर करेंगे, देखो सबको मिल गया ना, नहीं तो एक ही टॉपिक हो जाता है, ऐसे विचार आया जी। हाँ अभी बहुत अच्छी बात है, कल ही फॉरेनर्स को क्लास ज्ञान सुरु में इसी पर किया था, साइलेंस क्या है, आप कहते हैं साइलेंस में बैठो तो नींद आ जाएंगी। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में साइलेंस का दो अर्थ है, एक है डेड साइलेंस, निल होके बैठना, वो हमारा नहीं है, वो साधु सन्यासी करते हैं, प्राण श्वास रोक के बैठते हैं 5 मिनट 10 मिनट, वो हमारे पास नहीं। हमारे पास साइलेंस को शब्द है स्वीट साइलेंस, जो विधि बताया, मन और बुद्धि दोनों चलनी चाहिए, लेकिन अच्छे विचार चलना चाहिए। अच्छे विचार भी किसको कहते हैं? आत्मा के और परमात्मा के, वो छोड़ के दूसरे नहीं, ये स्वीट साइलेंस, ये जो आत्मा यहां बैठी आत्मा का चिंतन करते परमात्मा का चिंतन कर रहे हुए आधा घंटा, इसके द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उसका नाम है साइलेंस पावर। वो इस वातावरण को भी शांत कर देता है। अगर इस वातावरण के अंदर इधर बैठे हुए कोई योग कोई पापी आत्मा भी है उनका भी पाप मिटाती है। क्यों? संगठित रूप में अगर सब भी फैन चलाया जाए तो ये हॉल ठंडा हो जाएगा ना। तो हमारे इतने हम बैठे, हमारे पास दो दो फैन है। कौन से दो फैन है? एक मन एक बुद्धि। दोनों फैन सभी के अंदर ऐसे चलते रहे तो एकदम शांत वातावरण होता है। तब संगठित रूप में भक्ति करते हैं तपस्या, सभी के मन में एक जैसे विचार, नहीं तो कोई मुरली का चिंतन कोई स्वमान कोई और कुछ, ऐसे एक ऐसा फैन चल रहा है एक ऐसा चल रहा है तो क्या होगा, है ना, उल्टा होगा ना। तो सभी के मन में बाबा ने योग की एक ही विधि, सभी एक ही बाबा के बच्चे, आत्मा समझ मुझे याद करो। ये बाकी में क्या स्वमान ले लो और कुछ ले लो, औरों के जैसे माता जी ने कहा मैं रोज मधुबन में आता, हाँ ठीक है, लेकिन उससे योग नहीं आए वो, उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। हाँ सभी को मैं कहो एक जैसा करो नहीं, फिर भी कोशिश करो जो बाबा का नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री है ना, प्रजा राज परिवार फिर प्रजा राजा है ना, सभी एक जैसे नहीं, एक हाथ सभी एक जैसे नहीं होंगे। तब कहा कि पहले नंबर परफेक्ट योग है जो करना चाहते हैं सिंपल, बैठते ही अमृत वेलर शाम को याद रखना, नंबर वन बनना चाहते हो, सुपूत बच्चे बनना चाहते हो, मेरे वारिस क्वालिटी बनना चाहते हो, सत्युग के राजा बनना चाहते हो, समझ में आया, तो बैठते ही आत्मा समझकर मुझे याद करो, वो विधि बताया। दूसरा बाबा ये नहीं कर सकते हम, हाँ सेकेंड नंबर है तो बाबा ने कहा उसको तीव्र पुरुषार्थ कहा कि जो बाबा आज अपने बाबा मुरली में ये सुनाया था, बाबा मेरा बाप है टीचर है, बाबा आप मेरे सदगुरु है, आप मेरे कंपेनियन हो, ऐसे सर्व संबंध जोड़ो, वो भी चलेगा, वो सेकेंड नंबर में जाएगा। थर्ड और एक है, कैसे बैठ के जैसे मंदिर में बैठ के बाबा आप प्यार के सागर हो, आप आनंद के सागर हो, बाबा आप बहुत अच्छे हो मीठे हो, ऐसे रूरियान करते रहते ना, ये थर्ड ग्रेड है। जैसे भक्ति में वही करते थे, भगवान की महिमा करते थे मूर्ति के सामने बैठकर, भगवान आप ऐसे हो आप ऐसे हो आप ऐसे हो, महिमा करते थे, अभी भी वही कर रहे हो, ये थर्ड तीन ग्रेड्स है। आप उससे समझो कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए याद योग और तपस्या तीन है। तपस्या विकर्म विनाश करने के लिए, वो अमृत वेले और शाम को सारा दिन कर्म करते याद योग करो, योग में सर्व संबंध, बीमारी कुछ हुई मेरा डॉक्टर शुभ बाबा है, बाबा को पूछना बाबा मैं क्या करूं, सब्जी काटते काटते हाथ कट गया बाबा मेरा डॉक्टर है, बाबा मैं क्या करूं, बाबा याद दिला बच्चे फलाने डॉक्टर के पास जाओ ये दवाई ले लो। तो हर कोई प्रश्न आया मुझे बाबा से पूछना है, नहीं इस बेंजू के पूछना है इनको पूछना है, मेरे टीचर बाबा और कोई नहीं, मेरा साजन मेरा बच्चा मेरा दोस्त एक सर्वसम्म, एक कर्म करते करते समझ में आया, और चलते फिरते किसी को देखते ही याद, इनको देखते क्या याद आया, अरे बहन जी कहां से आई, नहीं कहीं से भी आने दो, शुभ बाबा के बच्चे बाबा इस आत्मा को शा ये याद, फिर याद आया इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, नजदीक है सुना सकते हैं, बहन जी देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, ये याद, ये ऑर्डिनरी है, इससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं, समझ में आया। याद ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मुरली में बाबा तीनों बताता है, याद करो योग लगाओ तपस्या करो, बताता है हम सभी मिल करके याद करो लगाते कि ये तीनों अलग अलग चीज है, समझ में आया। अब बताओ और जी नजदीक ना, बुद्धि का आलस्य, अच्छा बुद्धि का आलस्य, हाँ तो क्या होता है, करेक्ट क्या होता है, आपने रात को सोते समय सोचा मुझे अमृत वेले उठना है योग करना है, सो गया सारी एक दो तीन घंटा नींद ही नहीं आई, 11-12 बजे फिर 4 बजे अलार्म बजा, अरे आज रात को तो 11-12 बजे बाद नींद, आज नहीं उठते हैं कल उठ जाएंगे शाम को करेंगे, नहीं ये विचार, ये आलस, ये बुद्धि बताती है आपको दो घंटा अभी रेत 11 बजे कहते हैं 12 बजे नींद ही नहीं आई, सवेरे नींद अभी कब करूंगा मैं, नींद पूरी नहीं हुई, सवेरे आज नहीं कल योग करेंगे, ये बुद्धि का आलस। मुरली क्लास में जाना चाहिए, बहुत ठंडी है, बहुत बरसात है, आज मुरली नहीं सुनेंगे, शाम को सुनेंगे, आज थोड़ा सो जाता हूं, ये बुद्धि का आलस। इधर क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए, नहीं सारे कल्प के अंदर ये अमृत वाला आज ही मिलता है, दोबारा कल विनाश हो गया तो खत्म, एक कल्प तक नहीं मिलेगा। सारे कल्प के अंदर एक ही संगम युग, एक दिन मिस किया एक जन्म मिस हो जाएगा। एक दिन सारे कल्प में थोड़े से समय बाबा ज्ञान सुनाने आता है, आज अगर नहीं सुनी तो एक कल्प के लिए ज्ञान धन नहीं है। ऐसे मन ज्ञान जो सुना हुआ है वो बुद्धि को पढ़ाना चाहिए, अपने आप को, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, आपको ही पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे पढ़ा के उसको बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प। तो ये खंभा गाड़ दिया आपने, ये गाड़ने के बाद हिलता है तो क्या करे, इस तरफ एक पत्थर लगाते हो इस तरफ झुकना नहीं चाहिए, इस तरफ झुकेगा इस तरफ एक पत्थर लगाते हो, इस तरफ जाएगा इस तरफ पत्थर लगाते हो, चारों तरफ एक एक पत्थर, ऐसे संकल्प आता है आज सो जाते हैं। नहीं, अमृत वेला मिस नहीं करना चाहिए, बाबा आता है कल्प में एक ही दफा है, ये कमाई आज नहीं किया सारे कल्प में दोबारा नहीं मिलेंगे, एक कल्प के बाद, है ना। ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट से अपने को समझाओ तो बुद्धि का आलस से चला जाएगा, दृढ़ संकल्प होगा, नहीं मुझे उठना ही है, बाबा मदद करेगा, कुछ भी हो सब ठीक हो जाएगा, उधर जाके बैठू मैं। तो बुद्धि को समझाओ, बुद्धि ऐसे आलस तर्क देती है क्योंकि उसको आदत बनी बहुत जन्म से, ठीक है, ये करना चाहिए। हाँ, वो साइलेंट होना ठीक, तभी नींद आ जाती, फिर इस्त्री का यूज करो, ये फैन अगर नहीं चलाया तो योगी का तन और मन शीतल, फैन नहीं चला तो कैसे ठंडा होगा, ये दोनों फैन चलाना चाहिए। इसलिए हमारा योग ध्यान नहीं, ज्ञान युक्त योग है ये, जो ज्ञान को यूज करना चाहिए, निर्लोह के नहीं बैठना है। तो इसलिए तपस्या करने की विधि है, अमृत वेले शाम को बैठते ही, इधर आके बैठते ही शुरू करो, मैं कौन, कौन गया, कौन आया, इधर उधर नहीं, एक जगह पर देखते आराम से बैठना, आंखें खोल के बात करो, मैं कौन, धीरे से वेट करना है, बुद्धि से जवाब आना चाहिए, आएगा। फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, मेरे 7 गुण धीरे एक 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 पढ़ाओ, फिर मेरे कर्म, फिर मैं कहां से आया, परमधाम से, परमधाम में कौन है, शिव बाबा है, कौन है वो पूछना, हाँ पवित्रता का सागर है, और कौन है शिव बाबा, शांति का सागर, प्रश्न करना तो बुद्धि यूज कर हो जाएंगे, नहीं तो आप ही जवाब देते जाएंगे, पता है आपको, पवित्रता का सागर, शांति, ये रिपीट हो गया, प्रश्न करना शिव बाबा कौन, बुद्धि से जवाब, बुद्धि को यूज करना है, यही कठिनाई है, यही किसी को समझ में नहीं आता है। सब कहते बैठ के पता है मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, बाबा पवित्रता के सागर हो, आनंद के सागर हो, फटाफट रिपीट किया, नहीं पता होते हुए पूछ लो, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, बुद्धि को जागृत करना है, जो बुद्धि दुनिया ने ज्ञान ही नहीं सुनाया, तो बाबा ने कहा बुद्धि दिव्य होगी, दिव्य बुद्धि है, उसके बाद आप मुरली सुनते हो, सारे मुरली के पॉइंट याद रहती है, नहीं तो याद ही नहीं रहता है, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ नहीं हो रही है, ठीक है। और बताओ ना, क्यों, आपको दिन में पहले सारे दिन में काम नहीं था, अभी आपको घर में खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, संसार में रहते हो, तो अमृत वेले ऐसे दुनिया में 2 से 5 है, लेकिन आपको नहीं, आपको पहले खाना बनाने में मेहनत करना, अभी रेडी खाना मिला तो आप 4 बजे उठो, क्योंकि मनुष्य की आज ताकत है, आधा घंटा आप बैठ सकते हो, ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं, पहले शरीर ऐसे था, मजबूत था, 1-2 घंटे बैठ सकते हैं, अभी मैं आपको 2 घंटा बैठू नहीं चलता है, अभी समय परिस्थिति के अनुसार कम से कम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, इसलिए बाबा ने दोनों के बीच में 45 मिनट्स रखे हैं, 1.5 घंटा, न आधा घंटा न 1 घंटा, इतना शरीर ताकत नहीं देता है, बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं, बहुत पाप भरा हुआ है, वो एकाग्र नहीं होता है, फिर नींद आ जाती है, फिर दूसरे विचार चलते हैं और खत्म हो जाता है, आलस आ जाता है, उसके लिए थोड़ा खाओ और हजम करो। हम कहते 2 बजे उठो, 3, हाँ उठू, खाने की इच्छा है लेकिन हजम करने की इच्छा है, हजम करने की ताकत है नहीं, तो बहुत खाने का लोभ नहीं रखो, थोड़ा सा करो, विधि पूर्वक करो, ठीक है। और बताओ, और कौन पूछ रहा है? जल्दी पूछो, और 5 मिनट जी। वो बताया अभी, याद योग, अब सारा रामायण सुना, फिर कहते राम सीता का कौन है सब। इसलिए मैं सोचा, मैं बहुत दवा प्रयोग करके देखता हूं, इतना बहुत क्लास करा हो ना, तो देखा आपने सुना, क्या सुना पता ही नहीं, बहुत अच्छा था, इतना ही हो गया। तो मुझे लगा आज हिंदी है थोड़े से, बाकी डायमंड हॉल अगर ओम शांति बनोगे तो नहीं कर सकते। अभी डायमंड हॉल कल जाएंगे, वहां तो 10,000 है, उनको नहीं पूछ सकते। तो कल ज्ञान सरोवर में था, तो वहां भी बड़ा है, यहां नजदीक है, तो पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए मैंने कहा यहां प्रश्न है तो सब जगह नहीं करते। तो याद, योग और तपस्या, तीन बताया। चलते फिरते किसी को देखते याद आया, क्या शिव बाबा इस आत्मा का कल्याण करो। फिर कोई नजदीक मिली, माताजी आपके बाजू में बैठी, माताजी आज शिव बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात बताई थी, है ना, उनको देखते मुरली के पॉइंट याद आना चाहिए। ये याद, ये 8 घंटा सवेरे से रात तक कर सकते हैं, लेकिन इससे विकर्म बना नहीं, कोई विकर्म पाप नहीं हुआ, लेकिन पहले पाप किया हुआ नहीं मिटेगा, याद रहेगा। दूसरा, कर्म करते करते योग, सर्व संबंध जोड़ो, सब कर्म करते बाबा आपके लिए खाना बना रहा, नहीं मेरे पति को ये अच्छा लगता है, बच्चों को ये अच्छा लग रहा है, इसलिए खाना बना रहे हो, नहीं बाबा आपको भोग लगाना है, आप मेरा बेटा हो, आप मेरे पति हो, आप मेरा दोस्त हो, आप मेरे डॉक्टर हो, सब कुछ उनको बात करते करते कर्म करना, इससे भी विकर्म विनाश नहीं होते पहले वाले, है ना। फिर शाम को और अमृत वेला 4 से 5, शाम को 6:30 से 7:30, आधा घंटा जब बैठ के तपस्या, कहते योग अग्नि, कि जो पहले किए हुए पाप भस्म होना चाहिए, है ना, वो करने की विधि चाहिए। बैठते ही अपने आप से बात करो, मैं कौन, यहां से परमधाम तक बात करते जाओ, किससे, बुद्धि से, ठीक है। तो कैसे बात करो, प्रश्न करते जाओ, मैं कौन, बुद्धि जवाब देंगे, मेरा रूप, बुद्धि जवाब देंगे, मेरे गुण, मेरे कर्म, फिर मैं कहां से आया, परमधाम से, परमधाम में कौन है, शिव बाबा, कौन है वो, पूछते जाना, बुद्धि जवाब देते जाएंगे। तो यहां से परमधाम तक यात्रा, अगर आपके पास कोई समस्या है तो सूक्ष्मतन भी जा सकते हैं, तो कमाई कहां से, ऊपर से, ऊपर क्या है, सूक्ष्मतन है, सूक्ष्मतन में बाप दादा है, बाबा कल आपने मुरली में ऐसे कहा था, ये मुझे समझ में नहीं आया, आप बताओ, बाबा मुझे ये समस्या है क्या करो, बाबा ये बीमारी है क्या करो, कुछ बात करना है, तो सूक्ष्मतन में कर सकते हैं, नहीं तो बाबा के कमरे में भी कर सकते हैं, ठीक है, बाप दादा इधर है, लेकिन परमधाम में बाबा ने कहा अमृत वेले शाम को तपस्या जो परमधाम में, क्योंकि कल आपको परमधाम जाना है, बाकी रूर यान करना वो भी कर सकते हैं, करके फिर परमधाम में जाओ, तो बाबा की एक एक शक्ति ले लो। तो कहा सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, है ना, सर्वशक्तिवान बनना है, तो वो शक्ति चाहिए, सहन करने की, समाने की, बाबा पवित्रता का सागर वो चाहिए, इसलिए अमृत वेले तपस्या करो, ठीक। ये अगर आप 1 महीना 2 महीना करते हो रोज, देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं धीरे धीरे मिटते जाएंगे, तब कहेंगे योग अग्नि से विकर्म विनाश हुआ, ठीक है। योग क्यों करते हो, विकर्म विनाश करने के, दवाई क्यों लेते हो, बीमारी मिटाने के लिए, लेकिन अच्छा लग रहा है इसलिए मैं गोली खा रहा हूं, नहीं ना, मिटाने के लिए। हाँ, बाबा का टीचिंग ऐसा होता है, अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे आप बाबा के कमरे में गए, बाबा कमरे, बाबा मुझे ये काम करना चाहिए, और आप बता करके बाबा को बताया, चुप रहते हो, कुछ नहीं करते, बाबा को देखते रहते हो, तो आपको टचिंग आती, बच्चे ये करो, तो वो बाबा के, आपने बताया फिर विचार नहीं किया, ए अगर आपने बाबा को बताया फिर भी आपके अंदर तक टिकट मिलेगा कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, पहले से दुविधा है, तो देख करके बाबा से बात करते रहते, बाबा को सुन नहीं रहे आप, वो आपका विचार है ना, ऐसे। तो टचिंग जो आती है, एक बार सुनाओ, अगर सदा ऐसे करते हो, अगर बाबा को बता के गए आप, तो आपको लगता है कि ये काम होगा, वो बाबा मेरा कराएगा निश्चय, तो होता है। अगर आपके मन में दुविधा होगा कि नहीं बाबा को तो बता क्या है, पता नहीं बाबा करेगा, मेरा सुनता ही नहीं है, दुविधा है, तो कभी कभी टचिंग नहीं मिलती है बाबा को बताने का, दिल से नहीं बताया आपने तो काम होता भी नहीं है। इसलिए एक विश्वास रखे तो बाबा को मुझे बताना है, बाबा मेरा आज नहीं तो कल कराएगा। अगर नहीं करना है, किया नहीं तो बाबा को पसंद नहीं था इसलिए नहीं किया। टचिंग उसको कहते हैं। और एक दूसरा कि वो टचिंग है ना, आपको कभी ख्याल भी नहीं था ऐसा होना करना चाहिए, अपने आप आ गया। आपने कभी लगता मैंने कभी सोचा नहीं, ये बाबा की टचिंग है ना, उसको टचिंग नहीं तो आपका प्लान है, ये मुझे पता था ऐसा ही करना है, वही विचार आया, वो आपका, आपको पता चलता है। ये दोनों में डिफरेंस। और बताओ जी, नजदीक आना पड़ेगा। हाँ भाई, हाँ ये भी आता है। यस यस, चार्ट चार्ट में आएगा। अच्छा, पॉजिटिव गलत नहीं है, कर सकते हैं जी। अगर मैंने कल गुस्सा किया था, आज पता चला, तो एक बाबा के कमरे में जाते हो तो बाबा को, बाबा मैं आपने का श्रीमत है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे पता नहीं था, फिर भी मेरे पता भी था, फिर भी मेरे से भूल हो गई, दोबारा नहीं होंगे, बाबा एक दफा माफ करो, ठीक है। ये इतना के इतना खत्म नहीं हुआ। फिर शाम को योग में बैठते हो, योग में बैठ के आत्मा समझ के परमधाम के वो दाग लग गया है, फिर बाबा आपने कहा मैं पतित को पावन करता हूं, बाबा मेरे अंदर ये दाग लग गया, आज भूल से मेरे से गुस्सा हो गया, आपने मुझे अपने शक्ति से मिटाओ, ये दोबारा नहीं रहना चाहिए, इसको आपने कहा मैं पतित को पावन करता हूं, बाबा आपके शांति की शक्ति से ये दाग मिटाओ, है ना। तो ये दोनों चाहिए, समझाओ भी और शक्ति का भी प्रयोग, ज्ञान और योग का प्रयोग अपने संस्कार पर करो, ठीक है। और बताओ, माता जी आगे आना पड़ेगा। और लास्ट जी, आप अभी लेट आए, पहले सुना नहीं है ना, अभी आए। हाँ, शिविर के, शिविर शांतिवन से है। हाँ, देख लो, स्वमान, आपका मान, वो योग में नहीं आता है, वो चिंतन में, अपने के लिए, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का, ये याद रखो। आपने सफेद कपड़े पहने, ये याद रखना कि इधर बैठेंगे तो काला होगा, ये आपके लिए है, ये चिंतन है। इससे योग के नहीं, योग में जब बैठते हो तो तीन विधि है, याद, योग और तपस्या। याद, चलते फिरते इनको देखते याद आया, क्या ये शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, एक। दूसरा, इनको देखते मुरली के पॉइंट भी सुनाना चाहिए, बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने इनको बोलो आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, मुरली का ज्ञान, ये याद। ये चलते फिरते 8 घंटा कर सकते हैं, हो गया। फिर योग सुनाता हूं, फिर योग, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, सर्व संबंध बाबा से जोड़ो, बाबा मेरा डॉक्टर है, साजन है, आज बाबा कंपनी कंपेनियन है, दोस्त है, मेरा बेटा है वो, मैं उसके लिए खाना बना रही हूं, है ना, ये सभी संबंध, ये भी जोड़ो, ये भी योग में आया। और तपस्या अलग है, अमृत वेले और शाम को जब बैठ के आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करने, ये विकर्म विनाश करने के लिए, ये तपस्या। यो विधि बताया, आत्मा समझ के मैं कौन, विधि बताया था अभी इनको, मैं कौन, मेरा रूप, जैसे आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, बात कर सकते हो, नंबर चाहिए ना, तो बाबा से कैसे बात करते हो आप, तो बाबा ने विधि बताया, आत्मा समझो, कैसे समझो, बहन जी तो दिखाई देते आप, आपका फिर भी मैं पूछूंगा ना, बहन जी आपका नाम, आप कहां से आए, आप क्या करते हो, तो समझ में आया, मैं आत्मा हूं पता है, पूछ लो मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा है, मेरे गुण, मेरे 7 गुण, एक एक गुण पढ़ाओ, मैं जब परम धाम से आता पवित्र था, कितना शांत शीतल था, फिर मैं क्या करता हूं, इस शरीर के द्वारा कर्म करता हूं, योग में बैठ के कौन गया कौन आया इधर उधर नहीं देखना है, एक जगह पर, शरीर का उपयोग नहीं करो। 5वां, मैं कहां से आया, परम धाम से, परम धाम में कौन है, हमारा बाप है, कौन है वो, बाबा पवित्रता का सागर है, बात करो बाबा मुझे आपके जैसे बनना है, कैसे बनो, बाबा आप शांति के सागर, आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा, बाबा आप सबको ज्ञान सुनाते हो, आपके जैसे मैं भी औरों को ज्ञान सुनाऊंगा,
आप कभी किसी को दुख नहीं देते हो, सुख देते हो, मैं भी आपके जैसे सबको सुख दूंगा, ऐसे बाबा से बात करना, ये तपस्या। ये सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, ये स्वमान, ये सारा दिन कर्म करते मन को बिजी रखने के लिए। ये योग में स्वमान का चिंतन करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये चिंतन है। ये भी करो, अगर योग में बैठ करके इसी का भी चिंतन में जा सकते हो। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे बाप से कनेक्शन जुड़ो, करंट चाहिए, क्योंकि विकर्म विनाश होना है। हमारा योग करने का लक्ष्य अलग अलग है। हमारा योग क्यों कर रहे हो आप, दवाई क्यों ले रहे हो, दर्द मिटाने के लिए, नहीं तो दवाई नहीं लेते थे। नहीं, मीठी गोली है इसलिए मैं खा रहे हूं, ऐसा खाते हो, फ्री में दे रहा है इसलिए खाते हो, नहीं, पाप मिटाने के लिए योग का लक्ष्य है। दुनिया में अलग अलग है, किसी को चिंतन करने के लिए, किसी को किताब लिखने है उसके लिए वो सोचता है, किसी के पास बहुत समय है खाली जाता है, व्यस्त विचार आता है तो वो चिंतन करता है, अपना समय कपड़े धोते खाना बनाते यूज करो, विचार करो। लेकिन अमृत वेले शाम को बैठ के वो नहीं करना, वो कर्म करते करते कर सकते हैं। ये योग में बैठ के बाबा ने कहा निराकारी बनकर निराकार बाप को याद करो, तपस्या। ठीक है, समझ में आया, तीनों अच्छी तरह से समझना चाहिए। हाँ, पांच नाम है, यस, पांच नाम है, देही, विदेही, अशरीरी, आत्माभिमानी, अव्यक्त, ऐसे पांच नाम है। तो ये पांचों का अर्थ एक ही है, एक एक दिन एक एक शब्द यूज करता है बाबा, इतना एक ही है, अशरीरी बनना है। ठीक है, अभी सफेद लाइट में क्या करो, बाबा का नंबर भूल जाएंगे, पांच नंबर बताओ भाई जी, पांच नंबर बाबा का कौन सा है, भूल गए आप बताओ, एक नंबर नहीं आप बताओ, हाँ देखो नंबर वन उषार, अभी आप बताओ, ये पांच याद रखना, अगर ये नंबर गलत हो गया तो बाबा के पास आपका आवाज जाएगा, तो यहां पक्का करो, अभी बैठ के पांच मिनट योग करना, माना ये है तपस्या करने, नहीं तो नींद आ जाएंगी, नहीं तो व्यर्थ विचार आएगा, ये याद रखना। अगर ये दोनों आपका नहीं चलता है, या नींद या व्यर्थ या विकल्प आएगा ही, नहीं आना चाहिए, हो ही नहीं सकता, तो बैठते ही याद रखना, सदा ही आज से बैठते ही अपने आप से शुरू करो, मैं कौन, बुद्धि से जवाब आएगा, फिर मेरा रूप, बुद्धि से जवाब आएगा, ज्ञान है, मेरे गुण सातों गुण धीरे धीरे एक एक फटाफट नहीं, फिर मेरे कर्म मैं क्या करता हूं, फिर मैं कहां से आया, शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता, आठ शक्तियां मुख्य, एक एक शक्ति, दुर्गा को अष्ट शक्ति दिखाते, शिव ने शक्ति दिया, शिव ने कौन सी शक्ति दिया, एक एक शक्ति। ठीक है, तो वो अगर ये करते हो बैठ के, एक एक शक्ति लेके बात करो, उसके इधर उधर बातें नहीं करना। ठीक है, एक लाइन लाइन क्लियर, उसको कहते हैं एक रस अवस्था। अगर ये करते समय इधर उधर के कोई विचार नहीं आए, आपका 100% योग लग गया। अगर ये करते समय बीच में दूसरे कुछ विचार आते, अभी भी अशरीरी नहीं बने, एकाग्रता नहीं है, समझ में आया, तो कर सकते हो ऐसा, तो अभी करके बताओ, सफेद लाइट ले लो, नहीं तो किस किस को नींद आ दिखाई देते ना, नहीं तो आखिर ऐसे क्या तो पता चलता है, कौन कौन अच्छे तरह से बैठते हैं, पास कितने होने वाले हैं देखना पड़ेगा ना, बाबा को देखते रहो, और ये पांचों प्रश्न आराम से अपने आप से पूछ लो। ओम शांति, पांचों पॉइंट रिपीट किया कि दूसरा कुछ आ गया, एक दफा घर जाके नहीं आए, ये बहन जी तो इधर नहीं थे, एक मिनट इधर जाके आए, घर में कहीं जाके आई, हाँ देख लो इधर देख चक्कर लगा के आई, हाँ बुद्धि एक सेकंड क्लिप हो गया तो कहाँ चक्कर लगा के आ जाते हैं, इतने चेकिंग कहाँ गए, तो मन बुद्धि को मेरे से जोड़ो, ये अभ्यास चाहिए, करते करते होगा। ठीक है, ओम शांति।